ओम शांति, ओम शांति। सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय सतीश भाई जी का इस बाबा की सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी बाप दादा के महावाक्य। आज विशेष हम सभी के समक्ष आदरणीय भाई जी सुंदर क्लास लेकर आए हैं। आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आदरणीय सतीश भाई जी लौकिक रीति से सुल्तानपुर यूपी से हैं। आप बहुत ही अल्पकाल बाल्यकाल से ही बाबा के ज्ञान में हैं, 1970 से, और उसके पश्चात 81 से ही आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 45 साल से भी अधिक समय से पांडव भवन बाबा के मुख्यालय में, और साथ ही आप वर्तमान समय आर्ट एंड कल्चर विंग के भी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, मुख्यालय संयोजक हैं। आप विशेष रूप से बाप दादा का वरदान है आपको लिखने की कला, और अनेक सुंदर सुंदर बोल से आप हम सभी ब्राह्मण बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। आप विशेष रूप से गीत लिखते हैं। आप लगभग 3000 से भी अधिक गीतों के द्वारा अनेक आत्माओं का बाबा से संबंध जोड़ा है, और बहुत ही विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा जो गाए जाते हैं, जैसे आशा भोसले, सुरेश वाडेकर, महेंद्र कपूर, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति इत्यादि अनेकों के मुखारविंद से ऐसे ऐसे गीत हम सभी सुनते हैं। आप साथ ही आप किचन डाइनिंग आदि ऊपर की सेवाओं में भी बहुत सुंदर रीति से सहयोगी रहे हैं। आप 45 वर्ष से बाबा के यज्ञ में विशेष रूप से अमृत वेला बहुत पावरफुल रूप से करने का आपका अनुभव है। आपके द्वारा बाप दादा ने अनेक बार आपको वरदान दिया है कि आप सतीश भाई अर्थात सैटिस्फाई अर्थात संतुष्ट मणि आत्मा है, और ऐसे अनेक अनेक विशेषताओं के धनी, अनेक शब्दों की खान के आप आपकी झोली भरी हुई है, सबको भरते रहते हैं। साथ ही आप बहुत सारे न्यूज और शॉर्ट फिल्म तथा जो कार्यक्रम होते हैं, इंटरैक्शन सेशंस, बहुत सारे आप निभाते हैं बखूबी, और बहुतों को लाभान्वित करते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक गुणों के ध्वनि और खास मधुर वाणी ग्रुप के डायरेक्टर आदरणीय सतीश भाई जी से हम सुनेंगे। आपका आज का विषय है आसुरी संस्कारों का अंतिम संस्कार। आदरणीय सतीश भाई जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबका बाप दादा के घर, अपने घर, प्यारे स्वीट होम मधुबन में, शांति वन में, अपनी इस विशेष तपस्थली में और प्यारे से घर में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन है। विशेष साथ में होली अभी आप सबने मनाई, हम सबने मनाई, तो होली की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत ढेर सारी बधाई स्वीकार करें। और आज की मुरली के अनुसार आप सभी बाबा के राज दुलारों का, परमात्मा दुलारों का, त्रितख्त नशीनों का, अकाल तख्त नशीन आत्माओं का, परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्माओं का, भविष्य राज्य तख्त नशीन आत्माओं का, और स्वराज अधिकारियों का, विश्व राज अधिकारियों का, बाप से संपूर्ण वर्षा अधिकार लेने वालों का, और एक धर्म एक राज, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्तिवान वाली दुनिया के लिए एक धर्म की धारणा में स्थित रहने वालों का और एक राज्य बनाने वालों का, अखंड राज्य बनाने वालों का, माया से मुक्त राज्य बनाने वालों का, और साथ में प्यारे बाप दादा से सच्चाई और सफाई के आधार पर बाप दादा का दिल तख्त जीतने वालों का, और सच्चाई सफाई रख करके हम बाबा को सहज याद कर सकते हैं, इस विशेषता से सहज याद का अनुभव करने वालों का, मेहनत मुक्त रहने वालों का, और साथ में मधुबन में यहाँ होली मनाने वालों का, अपने कमजोर संस्कारों का अंतिम संस्कार करने वालों का, दैवी संस्कारों का आवाहन करने वालों का, और इसके साथ जो समय है उस समय के अनुसार स्वयं को मधुबन निवासी अनुभव करके, और एडवांस पार्टी बुला रही है, सब रास्ता देख रहे हैं, प्रकृति इंतजार कर रही है, सबके इंतजार की, सबकी पुकार को सुनकर उपकार करने वालों का, मर्सीफुल बनने वालों का, संकल्प और बोल के विस्तार को सार करके अंतर्मुखी बनने वालों का, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट बनकर फरिश्ता बनने वालों का, और सभ्यता और सत्यता की कल्चर से सच्चे दिल पर साहब राजी करने वालों का आज की सभा में, विशेष सभा में, प्रथम सीजन की इस लास्ट टर्न के शुरुआत की इस प्रथम क्लास में आप सभी का शांति वन एयरपोर्ट पर उड़ती कला में उड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। एक बार और अभिनंदन स्वीकार करें। तो आप सब होली मनाए, और आज भी बाप दादा ने होली के अर्थ रूप में हम सबको स्थित कर दिया, तो सबने होली मनाई है, सबने होली मनाई है, तो बाकी है क्या कुछ? होली मनाई माना, होली जलाई, होली मनाई, होली बने और होली बनाई, होली सो होली कर ली, और बाप दादा के साथ होलिए, ऐसे होली अर्थपूर्ण बनाए सफल करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का स्वागत है इस विशेष होली अवसर पर। विषय बड़ा अच्छा है, आसुरी संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दें, आखिरी संस्कार कर दें। आसुरी संस्कार कौन कौन से हैं? संस्कारों को समझना, संस्कारों की जटिलता क्या है, अगर वो संस्कार हमारे पास हैं तो उनसे होने वाले नुकसान क्या हैं, संस्कार किसे कहते हैं, और संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, संस्कार परिवर्तन कब तक करेंगे, और इसके साथ साथ अपने को परिवर्तन के लिए तैयार करना और उनकी लिस्ट बनाना, कौन कौन से संस्कार ऐसे हैं जिनको हमें परिवर्तन करना है। तो आप सब परिवर्तन के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं? आज भी हाथ उठाया सबने, बाबा के आगे भी, मुरली में भी, लंबा हाथ उठाएं। हाँ, सब रेडी हैं? एवर रेडी? जो कहा जाएगा करेंगे, ठीक है? बाबा जो कहते हैं एकदम रेडी, तो अपने लिए अभिनंदन कीजिए, ताली बजा के स्वागत करें, क्योंकि शुरुआत अब होने जा रही है। आपको बड़े अटेंशन से सुनना है, और फिर बाद में जब योग होगा उसमें इस चीज को अप्लाई भी करना है। आज आपको मैं वो बताने वाला हूं जो आपकी दिनचर्या के लिए, आपकी उड़ती कला के लिए, वर्तमान समय के लिए और बाप दादा दादियों के स्वप्न और संकल्प पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार हमारे बार बार मन, वाणी और कर्म के द्वारा, जब हम कोई कर्म करते हैं और कर्म करते करते वो आदत बन जाती है और आदत बनते बनते वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जमा हो जाता है, वो पक्का बन जाता है और समय समय पर सोते भी जगते भी संस्कारों के रूप में प्रकट होता है। तो वो संस्कार एक लंबे समय तक हम सब चले आ रहे हैं करते हुए, अपने लेते हुए, तो उन संस्कारों का ही रूप हम देखते हैं। जब किन्हीं के संस्कार अच्छे हो जाते हैं, डिविनाइज हो जाते हैं, हमारे संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, हमारे संस्कार फरिश्ते वाले हो जाते हैं, तो वो श्वेत वस्त्र में फरिश्ते रूप में दिखाते हैं। और वही संस्कार जब काले होते हैं, जब विकृति वाले होते हैं, विकारी होते हैं, आसुरी होते हैं, मलिन संस्कार होते हैं, कुटिल संस्कार होते हैं, कुसंस्कार होते हैं, तो वह संस्कार हमारी पुरुषार्थ में, हमारी स्थिति को बनाने में बहुत बहुत बाधा डालते हैं और वो इविल स्पिरिट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इविल स्पिरिट वाले जो ब्लैक दिखाई पड़ते हैं, उसका कारण यही है कि वो, उनके संस्कार बड़े कड़े होते हैं, बड़े काले हैं, इसलिए वो काले के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब हम सबको अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करना है। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार। मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार। और संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना ये बदल जाएगा, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना ये बदल जाएगा। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है, माया जीते जगत जीत है, माया से हारे हार, तराना जगिए गाएगा, जमाना ये बदल जाएगा, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना ये बदल जाएगा। चिंतन की पावन गंगा में, चिंतन की पावन गंगा में निज मन को नहला लो और चिंता चिता में जलती दुनिया जल्दी इसे बचा लो, चिंता चिता में जलती दुनिया जल्दी इसे बचा लो। शिव की शक्ति साथ आपके, आप में शक्ति अपार, ये चिंतन रंग लाएगा, जमाना ये बदल जाएगा, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना ये बदल जाएगा। और बहुत अच्छी लाइनें हैं, बदला नहीं है लेना किससे, बदला नहीं है लेना किससे, बदल के हमको दिखाना है कर्म योग की कड़ा मात से, कर्मों को सजाना है प्रभु के इस पुकार पर, जो होगा बलिहार करेगा सो वो पाएगा, जमाना ये बदल जाएगा, ये चिंतन रंग लाएगा, सुहाना सतयुग आएगा, जमाना ये बदल जाएगा। तो आइए इस प्रक्रिया को समझ लें। आप सब आज एक संकल्प करें कि मधुबन में आए हैं, अपने साथ स्टूडेंट लाइफ है हमारी, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, एक डायरी निर्माण कर लें, डायरी निर्माण करें, जरूर लिखें, एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत करनी है और उस यात्रा से अपने जीवन को, अपने मन को सशक्त बनाना है आने वाले समय के लिए भी और इस संगम युग को सफल करने के लिए भी। तो क्या करेंगे, एक डायरी बना लें और उस डायरी में नोट करें, दिव्य संस्कार कौन से हैं, मानवीय संस्कार कौन से हैं और आसुरी संस्कार कौन कौन से हैं, दैवी संस्कार वो कौन कौन से हैं, जब देवता बनेंगे तो हमारे संस्कार कैसे होंगे, संपूर्णता के संस्कार, मानवीय संस्कार जो दुनिया में लोग करते हैं और आसुरी संस्कार कौन से हैं, जिनको बाबा आज कमजोर संस्कार कह रहे हैं, जिनको कुसंस्कार कहते हैं, जिनको बुरे संस्कार कहते हैं, जो आसुरी संस्कार है उनकी भी लिस्ट बनानी चाहिए। हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन क्यों करना है इस बात को नोट करना है। एक तो संस्कार का लिस्ट बना ले, जो कमजोर संस्कार हैं, कमजोरी के संस्कार हैं, उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। दैहिक आकर्षण के संस्कार, रोने रूसने के संस्कार, नाराज होने के संस्कार, व्यर्थ बात करने के संस्कार, ज्यादा बोलने के संस्कार, बुरा देखने का संस्कार, परचिंतन, परमत, परदर्शन, इस प्रकार के संस्कार, और साथ में चिड़चिड़ापन के संस्कार, क्रोध के संस्कार, मूड ऑफ करने के संस्कार, तिरस्कार करने के संस्कार, घृणा के संस्कार और कामचोरी के संस्कार, चोरी करने के संस्कार और आराम के संस्कार, आलस्य अलबेलेपन के संस्कार, लोभ के संस्कार, संग्रह करने के संस्कार, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन इन लिस्ट को लिखते लिखते ये लिखना जरूरी है कि मेरे पास, मेरे साथ ऐसे कौन से संस्कार हैं जो संस्कार हमें धोखा दे रहे हैं, जो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो हमें यथार्थ रूप से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ऐसे संस्कारों की लिस्ट बनाएं और संकल्प करें कि अब जो संस्कार हमें बार बार धोखा दे रहे हैं, जो हमारी प्रगति में जो बाधक हैं, जो हमारी गति और प्रगति को बंद और मंद कर देते हैं, ऐसे संस्कार वो कौन कौन से हैं जिनको हमको प्रायोरिटी रख करके उनको संस्कारों को समाप्त करना है। दादी जानकी जी कहती थी कि हम सब उन दिनों में जब पुरुषार्थ के शुरू में जब बाबा ने बताया कि ये सब संस्कार हैं, तो एक एक संस्कार पर छह छह महीने तक, तीन तीन महीने, छह छह महीने तक उनके ऊपर लग जाते थे कि जब तक ये संस्कार हमारा परिवर्तन नहीं होगा, जब तक इसको समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक छोड़ते नहीं। तो डिटर्मिनेशन, एक संकल्प ये होना चाहिए कि ये संस्कार हमारे पुरुषार्थ में बहुत बाधा डालते हैं। उन संस्कारों का दुष्परिणाम क्या है उसको समझ ले, नोट कर ले। संस्कारों की जो जटिलता है वो योग लगने नहीं देता। संस्कारों की जटिलता हमारे पुरुषार्थ को ऊंचाई नहीं प्रदान करने देता, विचारों को महान नहीं बनाने देता, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देता, संगठन में तालमेल बिठाने नहीं देता, सबके साथ चलने में दिक्कत पैदा करता है। ये जो संस्कारों की जटिलता है, मूर्ति कला का अनुभव करने नहीं देता, ये संस्कारों की जटिलता मनमुटाव पैदा करना, संगठन में तालमेल न बिठाई देना और सबके साथ सही रूप से चलने न देना, जो दैवी परिवार का प्यार प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त ना होने देना, बाबा की याद जितनी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, ये अनुभव ना होना देना। और जैसा आज बाबा ने कहा कि यदि संस्कार परिवर्तन नहीं होगा तो संसार परिवर्तन कैसे करेंगे। संसार परिवर्तन के लिए भी और संपूर्ण पावन बनने के लिए भी, आत्मविमानी बनने के लिए, निरंतर योगी बनने के लिए, संस्कार परिवर्तन करने के लिए और संपूर्ण पावन बनने के लिए इन संस्कारों का परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। इसको नोट कीजिए कि कौन कौन से जो संस्कार हैं, ये संस्कार कितने बाधक हैं। जब तक उनको गहराई से पकड़ेंगे नहीं, तब तक संस्कारों का परिवर्तन असंभव होगा। संस्कार का परिवर्तन कब तक नहीं होगा, पहली बात नोट करने योग्य है, नोट करिएगा ध्यान से, जब तक संस्कारों पर अपनी गहरी पकड़ नहीं है, जब तक ये अनुभव नहीं है कि ये संस्कार आसुरी संस्कार है, ये संस्कार मायावी संस्कार है, ये संस्कार मेरे संस्कार नहीं है, ये संस्कार पतनकारी संस्कार है, ये संस्कार हमारे जन्म जन्म और कल्प कल्प के लिए नुकसान देने वाला संस्कार है, जब तक ये गहरी पकड़ नहीं होगी तब तक उनका परिवर्तन नहीं होगा। आप सबको अनुभव है, जब लौकिक में थे पहले जो इधर उधर पीते थे खाते थे वो कैसे छूटा, जिस दिन पता लगा कि इनका कोई महत्व है ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं, वो व्यर्थ है, वो हमारे है ही नहीं, ऐसे छूटे, जैसे कहते हैं सिर से सींग जो है जानवरों के, जैसे सींग उड़ जाए, ऐसे ही वो सब आदतें खत्म हो गई। तो ऐसे ही इन संस्कारों की व्यर्थता और इसकी दुष्परिणामिता, ये कितने खतरनाक हैं, हमारे सर्व प्राप्तियों में एक ऐसा सुराग है, एक ऐसा छेद है जो हमारी सारी उपलब्धियों को, सारी प्राप्तियों को सहज ही समाप्त कर देता है। तो आज हम सब संस्कारों की इस जटिलता को समझेंगे। दूसरा, संस्कार परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक हम संस्कार के लिए औरों को दोषी बनाएंगे, जब तक दोषारोपण, वो व्यक्ति अगर नहीं बदलता है, वही व्यक्ति सारा काम करता है, उसके कारण हमको क्रोध आता है, उसके कारण ये होता है, जब तक हम औरों को दोषी बनाते रहेंगे तब तक संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, संस्कारों का परिवर्तन तब होगा जब हमारे अंदर महसूसता की शक्ति आएगी, गहरी महसूसता की शक्ति, बिना रियल आई के, रियलाइज के, रियलाइजेशन के इनको समझ पाना, गहरे से समझ पाना ये आसान नहीं। आप देखते होंगे कितने भाई बहने वो लगे हैं और वो संस्कार उनके साथ आस्तीन की सांप की तरह, ये आस्तीन है देखा है ना, आस्तीन की सांप की तरह यहां बैठे होते हैं, पता ही नहीं लगता वो हमारे साथ में है और वो कितना नुकसान कर रहे हैं। और महसूसता की शक्ति भी कैसे होगी, जगदीश भाई जी ने एक किताब में लिखा है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ की किताब में लिखा है कि महसूसता की अलग अलग परत है। एक महसूसता है कि वो बदले तो मैं बदलू, एक महसूसता है चलो मैं करता तू हूं कर लूंगा हो जाएगा, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि समय पर हो जाएगा, बाबा ने कहा इस धोखे में नहीं रहना, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का स्वराज अधिकारी बनने का अनुभव, बहुत काल का राज्य भाग देने के निमित्त बनेगा, इसलिए अभी से उस चीज के लग जाना है। महसूसता की शक्ति, जब तक हम अंदर में ये पक्का नहीं कर लेंगे कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना है, मुझे बदल के ही रहना है, तब तक ये संस्कार परिवर्तन होना मुश्किल है। तो इन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए दृढ़तापूर्ण संकल्प, ठान लो कि मुझे करना है, मैं करके ही रहूंगा, जब तक ये संस्कार परिवर्तन नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगा, अपने आप से संकल्प लें तब तक मैं ये नहीं करूंगा, उसके लिए लक्ष्य बनाए और पक्का करके परिवर्तन करें, जितना जल्दी हो सके उनसे मुक्त होने की बड़ी जरूरत है। दृढ़तापूर्ण संकल्प, मैं भी कभी कभी अपनी धारणाओं में जहां कहीं भी कुछ चीजें कमजोर देखता हूं तो वहां पर हमारे पास ऐसी ऐसी कविताएं हैं जो बहुत बल लेती हैं, बड़ी शक्ति देती हैं, और वो ठान लेने का है। एक कविता याद आती है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूं, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। फिर इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आगे दो लाइनें बहुत अच्छी हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, मैं अपने हाथों रचा हुआ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक कर सोना निखरूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, समय बहुत कम है। हमारी दादियां लगभग सब प्रस्थान कर गईं, एडवांस पार्टी अलग बुला रही है, बाबा अलग बुला रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, प्रकृति अलग पुकार रही है। कब तक हम डनलप का तकिया लगाकर कब तक सुनते रहेंगे, कब तक लेते रहेंगे, कब शक्तिशाली बनेंगे। समय बार बार नहीं आने वाला है, इस समय को पहचानो, जानो, जो करना है कब करना है, कब करना है, जो करना है कब करना है, अभी करना है, अभी नहीं तो, बोलो जोर से, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, पक्का, अभी नहीं तो कभी नहीं, एकदम। इसके लिए उमंग उत्साह के साथ, पूरे पूरे जोश के साथ लग जाना है। और इसके साथ साथ संस्कार परिवर्तन कब तक होगा, जब तक हम महसूसता की गहरी शक्ति के साथ उसको हम मिटा के नहीं रहेंगे। इसके बाद है, जब तक हम संस्कारों पर दृढ़ता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, ईश्वरीय सहयोग के साथ, ईश्वरीय योग के साथ, जब तक हम उसके ऊपर टूट नहीं पड़ते हैं दृढ़ता के साथ, तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। अब आपकी उस संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि उस संस्कारों को आप आसुरी संस्कार समझ रहे हैं। इसके लिए क्या करें, अपने सामने एक दर्पण ले लें। ये काम विकार का संस्कार है, ये आसुरी संस्कार है, ये दैवी संस्कार है। आसुरी संस्कारों से मुक्त होने का सबसे अच्छा मार्ग है दैवी संस्कारों की लिस्ट को देखना और अपने दैवी संस्कारों का आह्वान करना। मैं कौन हूं? मैं स्वराज अधिकारी, सो विश्व राज अधिकारी बनने वाला है। मैं वो हूं जो 2500 वर्ष तक इस संपूर्ण विश्व पर, अखंड भारत में मिल करके, हमने पूरे अखंड भारत में यहां पर देवी देवता बनकर संपूर्ण सत्व प्रधान प्रकृति पर, संपूर्ण सत्व प्रधानता के साथ हमने यहां पर अखंड विश्व का, एक धर्म का, एक राज्य का, लॉ एंड ऑर्डर वाला, सुख शांति संपत्तिवान वाली सृष्टि पर हम अखंड राज्य करते थे। हम वो हैं देवी देवता घराने वाली, जो विश्व महाराजन विश्व महारानी के साथ वैसे बन करके, उनके साथ एक नहीं 2500 साल तक हम देवता बनकर, संपूर्ण सत्व प्रधान बनकर राज करते थे। आप ये भी नोट कर लें, संस्कारों का परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक अपने आदि अनादि संस्कारों को हम मूल संस्कार नहीं बना लेते। हमारे आदि अनादि संस्कार क्या रहे हैं, हम कौन है, कितनी रॉयल्टी वाली आत्माएं, कितनी विशेष आत्माएं, अपने उस रॉयल्टी को अनुभव करें, स्वयं को देखें। और कभी कभी मन करे, जब घर में बैठे हैं तो बाबा के जमाने में बाबा ऐसे युगलों को, उनको पूरा राजाई ड्रेस पहनाते थे, पहना करके उनका फोटोग्राफी कराते थे और कहते थे कि अपना लक्ष्मी नारायण बन करके अपने यहां अपने बेडरूम में लगा दो और देखो कि मैं राजा बनने वाला हूं, यही बनने वाला हूं। अपने सामने देखें अपना चित्र कि मैं क्या बनने वाला हूं। बाबा स्वयं एक दिन हिस्ट्री हॉल में दोपहर के समय पर, दरवाजा बंद था और अंदर व्हाइट लाइट थी, बाबा को देखा। बाबा खूब डांस कर रहा था, खूब डांस कर रहा था ब्रह्मा बाबा। दादी जानकी गुजरी तो देखा कि कुछ क्या हो रहा है, अंदर लाइट जल रही। दरवाजा खोला तो देखा बाबा खूब डांस। बाबा क्या हो रहा है? कहा बच्ची ये मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, ऐसा बनूंगा। खूब बाबा डांस कर रहा था। क्या नशा! आपको भी अभी नशा चढ़े तो दरवाजा बंद करके अच्छे अच्छे गीत बजा करके खूब डांस करो, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत बने, ये बाबा ने आपके लिए बनाए। अब उदास होने का, निराश रहने का, मायूस रहने का अपने कोई समय नहीं, अब उसमें रहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक हैं। संसार को मुस्कुराहट बांटने वाले यदि स्वयं ही रोते रहेंगे तो रोतों को कौन हंसाएगा? यदि संसार दुखी रहेगा और आप भी अपने दुखों में दुखी रहेंगे तो उनके दुख कौन हरेगा? यदि संसार ही अपने उलझनों में उलझा है, परेशान है और आपके ऊपर भी गहरी चिंता की रेखा है, आप स्वयं मायूस हैं, आप स्वयं उदास हैं, तो संसार को खुशहाल कौन बनाएगा? आपके अलावा और कौन आएगा? कोई और नहीं। इसलिए आपको ही परिवर्तन करना है, आपको ही बदलना है। और हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? इस संकल्प हो, हमें बदलना है, हमें बदलना है। कोई बदले या न बदले हमें बदलना है, कोई बदले या न बदले हमें बदलना है, हमें बदलना है। हमारे बीच में आत्म भाई जी आ गए, अभिनंदन करें, ताली बजा के अभिनंदन करें। तो ये प्रक्रिया है जो भगवान के द्वारा हमको मिलती है कि बच्चे अपने संस्कारों के ऊपर कड़ी निगरानी रखो। संस्कारों के परिवर्तन के लिए बाबा बार बार कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि स्वराज अधिकारी बनो, स्वराज अधिकारी बनो। ब्रह्मा बाबा अपनी डायरी में पहले ही, ज्ञान की शुरुआत में उससे पहले भी वो डायरी बनाते थे, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, ऐसे बना करके, और उसमें तमाम वो दरबार लगाते थे, मन मंत्री ऐसे करके पूछते थे बाबा कि ए मन, तुमने तो बड़ा नुकसान कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया, मुझे भटका करके मेरा सारा खत्म कर दिया, तो कब तक हमारे साथ खेल करता रहेगा? अब तो लाइन पे आ जा, अब तो सुधर जा, ऐसे करके बाबा लिखा करते थे। मैंने भी ऐसे लिखे, स्वराज अधिकारी बनने के बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। आप एक कुछ पल के लिए जैसे मैं कहूं ऐसे करें, ऐसे करें, यहां पर करें हाथ, मस्तक पर रखें अपने, यहां पर जहां बैठे हैं फील करें, और थोड़ी देर के लिए राज दरबार लगाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, करे मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को, माया की छाया से पल पल बचाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। यहां रखें उंगली, फील करें मस्तिष्क पर, यहां पर ब्रेन पर। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। सिर पर हाथ रखें, सिर पर हाथ रखें, फील करें कि बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर हैं। संपूर्ण पवित्रता की, संपूर्ण सुरक्षा की, संपूर्ण संतुष्टता की, ये हमारी प्रॉपर्टी मुझे बाबा दे रहे हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं, भगवान की मैत्री कृपा है। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज्य फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, भ्रकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। नीचे करें इस तरह की ये एक्सरसाइज, ये फीलिंग, ये अभ्यास हमसे निरंतर होते रहना चाहिए। देखें अनुभव करें, जैसे कि मैं आत्मा राष्ट्रपति हूं, है ना, सिर जो है शिक्षा मंत्री है, कभी 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 राजा होते हैं, पहले तो राजतंत्र होता था, अब तो डेमोक्रेसी हो गया, तो इसमें भी डेमोक्रेसी हो जाता है। अगर आपका कभी कुछ खाने पीने का लालच लगे, कभी इंद्रियां चंचल होती हैं, आंख से होता है, तो देखो कि पहले तो राजा होता था, मस्तक पर राज करते थे, अब तो ये डेमोक्रेसी हो गया। उसमें क्या कहते हैं, आत्मा राष्ट्रपति है, नाम मात्र ऊपर है, और मन जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, सिर जो है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, आंखें जो है कानून मंत्री बन जाते हैं। होता ना पार्लियामेंट में सारे मंत्रालय वाले सारे मंत्री बैठे होते हैं। ये कान क्या है, ये संचार मंत्री है, ये मुख क्या है, सूचना प्रसारण मंत्रालय यहां पर है, ये नाक क्या है, जांच प्रदूषण मंत्री, ये जांच प्रदूषण सूंघता रहता है इधर उधर, ये मिल जाए वो मिल जाए क्या हो जाए, खुशबू उशबू देखता रहता है हमेशा। ये दांत क्या है, ये खाद्य के खाद्य मंत्री है, और फिर ये जीभ क्या है, ये उद्योग धंधे में लगा रहता है, खाने पीने के उद्योग धंधे में, बोलने में, उद्योग धंधे में, बात करने में, इसमें निरंतर लगा होता है। तो इस मंत्रालय को समझें कि किस तरह से ये मंत्रालय है हमारे बीच में, तो इस मंत्रालय को समझें। फिर ये क्या है, ये चमड़ी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्री, अगर इस शरीर पर चमड़ी ना हो तो रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री कैसे बनेंगे। और इसी की तरह हमारा ये पेट क्या है, पेट परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये हृदय क्या है, हार्ट, ये रक्त शोधन होता है ना, गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय यहाँ पर है। ये टांगे क्या है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ये हाथ क्या है, रोजगार मिनिस्टर है, अगर कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, है ना। तो इस तरह से बड़े मनोरंजक ढंग से भी आप स्वराज अधिकारी बन करके इस तरह से अपने स्वराज्य को बराबर कायम रख के चेकिंग करें, पूछे, आए मेरी आंखों ठीक हो, हाथ ठीक हो, मुख ठीक हो, अगर नहीं ठीक है तो उसे क्षमा मांगे, करता मैं और परिणाम भोगना पड़ता है प्रजा को, करता राजा है और परिणाम किसको भोगना पड़ता है, प्रजा को। तो इस तरह से अपना स्वराज्य दरबार लगाएं, अपनी जो है वो देखें कि किस तरह से मैं अपने एक एक कर्मेंद्रियों की कितनी मैं संभाल करता हूं, कितना मैं उनको संभाल से ऑर्डर प्रमाण चलाता हूं, क्या कर्मेंद्रियां वो हमारे ऑर्डर प्रमाण चल रही हैं। इस प्रकार से स्वराज अधिकारी बनकर के बहुत अच्छा एक आप हर रोज दरबार लगाएंगे तो आत्मा में शक्ति आ जाएगी और आप उसमें शक्तिशाली बन जाएंगे। तो एक तो ये दरबार लगाएं, दूसरा संस्कार परिवर्तन के लिए बीज रूप स्थिति का बड़ा आवश्यक है, बीज रूप स्थिति। एक हवन कुंड बना दें और हवन कुंड बना करके, जैसे मधुवन में आप आए हैं तो इसके पहले आते ही आप एक संकल्प करके जाएं कि मेरा ये जो संस्कार है, चाहे वो दैहिक आकर्षण का संस्कार है, चाहे वो क्रोध के संस्कार हैं, चाहे लोभ के गहरे संस्कार हैं, मोह के हैं, अहंकार के हैं, आलस के हैं, ईर्ष्या के हैं, भय के हैं, असुरक्षा के, जितने भी संस्कार हैं, उनमें जो मोटे मोटे संस्कार हैं उनको लिख करके, जैसे कि मैं आत्मा राजा बन करके सामने हवन कुंड बन करके मैं उसमें जला रहा हूं और ये दग्ध हो रहा है, ये दृश्य सामने देखें और याद करें कि मैंने मधुबन में महायज्ञ में इन विकारों की आहुति दे दी, अब ये हमारे पास तक रहने वाले नहीं है, ये मैं हमेशा के लिए इनको तलाक दे रहा हूं, तिलांजलि दे रहा हूं, इनको समाप्त कर रहा हूं। इस तरह के श्रेष्ठ संकल्प के साथ आप अपनी शुरुआत करें, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा है, ऐसे दोनों हाथ करें, अपना दोनों हाथ करें, अनुभव करें कि मैं परम धाम में हूं, परम धाम को पूरा लेकर के जैसे ब्रह्मांड को मेरे दोनों भुजाओं में लिया हूं, और ऊपर देखें ऐसे और फील करें कि जैसे बाबा संपूर्ण सर्वशक्तिमान अपनी सर्व शक्तियों की किरणों से, गुणों और शक्तियों से अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे दे रहे, और फील करें हम जब से आए आपकी इन किरणों के नीचे हम आ गए हैं, शीतल शीतल झरनों के नीचे, ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है, अब तो सितारों में अपना बसेरा है, ओ बाबा आपके प्रेम ने घेरा है, मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे ज्यों आ गए हैं, शीतल शीतल झरनों के नीचे, शीतल शीतल झरनों के नीचे। परम धाम में बाबा को संपूर्ण रूप से और अपनी निराकारी स्थिति का अभ्यास करें, नीचे करें। दूसरा, ये अभ्यास साथ साथ करते जाएं, बिंदु रूप का अभ्यास आपका निरंतर चलता रहना चाहिए। हम सब जानते हैं देह भान और देह अभिमान सारी संस्कारों का, सारी बुराइयों का, सारे अवगुणों का, सारे दुर्गुणों का, कमजोरियों का मूल कारण है, और उसके लिए आत्मिक निश्चय का अभ्यास ये निरंतर होता रहना चाहिए। हमारी दिनचर्या में चार बातें नोट कर लें, प्रतिदिन आपको तपस्या करनी है, एक एक घंटा टाइम देना जरूर है, सब देंगे, सब करेंगे, करेंगे ना सब, सब सुन रहे हैं या सुनते रहेंगे, करना भी है, लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ, हाँ लंबा हाथ उठाइए। पहली तपस्या है आत्मअभिमानी बनने की तपस्या, इसमें आत्मचिंतन में, आत्ममंथन में, आत्मदर्शन में, आत्मन्वेषण में, आत्मविश्लेषण में, आत्म संशोधन में, आत्मपरिमार्जन में, आत्मनिरीक्षण में, आत्मपरीक्षण में, आत्मपरिवर्तन में, ये प्रयोगशाला है, इसमें बैठ जाएं, ऐसे फील करें जैसे कि बाबा को मैं देख रहा हूं, सामने मैं आत्मा हूं, इतने में देखता हूं कि आत्मा मैं हूं लेकिन शरीर जो है जो साथ में है वो शरीर गल के गिर गया नीचे, केवल बाबा और मैं, बाबा और मैं, ऐसे अनुभव करें। फिर कभी कभी सोल कॉन्शियस बनने के लिए अगर बॉडी आपको बार बार आती है दृष्टि में, स्मृति में, तो चारों तरफ अपने शरीर के चारों ओर एक गोलाकार बनाएं और उसको समेटते जाएं, उसको समेटते 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 समेटते, जैसे मैं एक बिंदु बन गया, बिंदु बन गया, फिर उसको बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे करते करते फिर अपना शरीर देखें। कभी पुरुषार्थी शरीर सामने, संपूर्ण शरीर सामने, जैसे मैं पुरुषार्थी शरीर में हूं तो सामने मेरा संपूर्ण स्वरूप है, जो हमारा वतन में शरीर है, जो हमारा संपूर्ण शरीर है, उसको लेकर के सामने देखें, जिसको फरिश्ता का शरीर कहते हैं, एंजेलिक बॉडी जो है उसको देखें फरिश्ते के रूप में, ऐसे देखें, फरिश्ता बाबा, फरिश्ता मैं, ऐसे बात करें, इंटरेक्शन, ये आपको बहुत मदद करेगा। बिंदु रूप स्थिति के लिए अलग अलग उपमा लेकर, ये शरीर दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूं, ये शरीर सीप है, मैं आत्मा मोती हूं, ये शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्रधारी हूं, ये शरीर शस्त्र है तो मैं शस्त्रधारी हूँ, ये बाजा है मैं बजाने वाला हूँ, ये राजधानी है मैं इसका राजा हूँ, ये रथ है मैं रथवान हूँ, ये मोटर है मैं इसका ड्राइवर हूँ, ये सोने की डिबिया मंजूषा है मैं इसमें हीरा चमक रहा हूँ। ऐसे ऐसे उपमा लेकर के दो दो मिनट तक, तीन तीन मिनट तक उसमें बैठें और फील करें कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है मैं अलग हूँ। ये अभ्यास करने की बड़ी जरूरत है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बैठे तो खूब आनंद आता है। आप शरीर से अलग होने का ये अभ्यास, यही अभ्यास हमको संस्कारों से, व्यर्थ संस्कारों से, बुरे संस्कारों से, देहभान के संस्कारों से मुक्ति दिलाएगा। मात्र यही आत्मज्ञानी बनने की तपस्या में लग जाए। दूसरी तपस्या हमारी निरंतर होनी चाहिए और वो तपस्या है निरंतर याद की तपस्या। निरंतर याद की तपस्या के लिए मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा अभ्यास बताता हूं। ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें, फील करें कि बाबा मेरे सिर पर है, बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, चल रहा हूं, भोजन बना रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, कोई भी कार्य करते हुए इसी एक अभ्यास को इतना पक्का कर लीजिए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते यही फील हो बाबा मेरे ऊपर मेरे सिर पर, बाबा की लाइट है, बाबा की किरणें, बाबा किरणें और मैं आत्मा। ऐसे करें, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं। ये अभ्यास आपको अंत मते सगते बनाएगा। मैं आत्मा दिखाई पड़ू, बाबा दिखाई पड़े और किरणें आ रही, पावर आ रही, बाबा किरणें और मैं आत्मा। अभी आप जब योग के लिए बैठेंगे तो इसमें यही अभ्यास करें लगातार कि जैसे बाबा मेरे सिर पर आ गए, परमधाम छोड़ो, परमधाम को यही ले आओ, बाबा आपके साथ, आप बाबा के साथ, बाबा की संपूर्ण शक्तियां मुझ में उतर रही हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा। और यही अंत में भी रहे, अंत में जब शरीर हमारा छूट रहा है तो भी यही ध्यान रहे, जैसे बाबा की लाइट फुक बना करके, जैसे मुझे पकड़ करके मुझे अपने साथ ले वतन में लेकर जा रही, तो बाबा, बाबा की किरणें और मैं आत्मा, ये आपको शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराएगा निरंतर याद करने का। आपने देखा होगा हमारे चित्रों में भी, गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान कैसे बनाए, उसमें घर में है, भोजन बना रहे हैं, बाबा की लाइट चल रही है, बाबा की लाइट मेरे सिर पर है, सब कुछ करते हुए याद करना, और उस याद की यात्रा से घर जो है हमारा कैसे कमल फूल समान बन जाता है, गृहस्थ बड़ा अच्छा बन जाता है। तो एक अभ्यास ये करते रहे। एक अभ्यास आपको और बता देता हूं, आप मेरे साथ बैठ जाएं, पांचों स्वरूपों का अभ्यास, और इसको मेरे साथ करें जैसा मैं कहूं, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, कभी 5 बार नहीं होता था, 15 बार बाबा 18 बार कहते थे बड़ा मुश्किल होता था, अब वो 50 बार भी कर लेते हैं, कभी कभी तो 100 बार भी कर लेते हैं, बड़ा अच्छा अभ्यास, आप भी दोहराइए मेरे साथ। मैं ज्योति सितारा, बोलिए, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। अनादि एक बार फिर, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। बहुत अच्छा अभ्यास। अब अंत में मेरी सात बात नोट कर लें। बहुत अच्छा, सात बातें आपकी दिनचर्या में हो जाना चाहिए। सवेरे उठें, उठते ही सवेरे बाबा को प्रेम से प्रणाम कर लें। सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। पहले उठते ही बाबा को नमस्ते करें। उस पहले ही दृष्टि में, पहले संकल्प में, जैसे मैं वतन में रात को शरीर छोड़ा बाबा की गोद में, और फिर रात सवेरे जगाया बाबा ने बड़ा प्यार किया, सामने बाबा को देखा और बाबा को बड़े प्रेम से नमस्ते। अगर मुद्रा में भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बाबा को भी देखेगा बाबा और आपको भी तो पता लगेगा मैं भी नमस्ते कर रहा हूं, नहीं तो बाबा नमस्ते किया तो पता भी नहीं लगता है। तो सवेरे प्रेम पूर्ण प्रणाम कर लें बाबा को, पहली ही नजर में, पहली दृष्टि में शक्ति से भर लें स्वयं को। दूसरा है, बाबा के साथ जैसे बाबा ने उठाया, और आज बाबा ने जैसे बताया कि खड़े होकर के बाबा ने खड़ा करके मुझे प्यार किया, और मैं चारपाई से उतर नहीं रहा हूं बल्कि आज मैं अवतार ले रहा हूं। रोज ही आपको अवतरित होना है, रोज अवतरित होना है, रोज वतन में जाना है। तो अपनी दिनचर्या का आरंभ इस विशेष संकल्प के साथ करें कि मेरा अवतार हुआ है। आप सब फिर करें एक बार, और एक बार ऐसे बैठे शिव शक्ति के रूप में और देखें, मैं शिव शक्ति हूं। बोलिए, सब कोई बोलिए, पूरी आवाज आनी चाहिए। मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं महान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसे संकल्प लेकर के तीन चार बार मुख से भी कह सके तो अच्छा है। सबके आगे मत खड़े हो जाइएगा ऐसे करके, बल्कि मन में मैं शिव शक्ति हूं, मेरा आज अवतरण हुआ है, ये संकल्प पक्का करें। तीसरा संकल्प है अमृत वेले पावरफुल करें, 4 से 4:45 बजे तक अमृत वेले को पक्का करें और अच्छी तरह से करें, जो आपकी दिनचर्या का आधार बन जाए। चौथी बात, बाबा की मुरली का बहुत अच्छा अध्ययन करें, बार बार पढ़ें, भोजन कर रहे हैं तब भी पढ़ें, नोट करें, जो भी समय, जहां भी बीच में, जहां भी व्यर्थ कुछ सोचने का कहीं गुंजाइश हो रही हो, वहां पर भी अपने आप को मजबूती के साथ, वहां पर बाबा की मुरली को बार बार पढ़ना। जितना मुरली का अध्ययन होगा, मुरली का श्रवण होगा, मुरली का पठन पाठन होगा, उतना ही हम बाबा के प्यार में समाये रहेंगे। चौथी पांचवी बात कर्मयोग, छठी बात एकांत, और सातवीं बात जो अंतिम बात है वो धन्यवाद का है। सबको धन्यवाद देकर रात को सोएं। पहले इसका धन्यवाद करें, करें धन्यवाद। थैंक यू शरीर, मेरे साथी बहुत साथ दिया, संगम युग में साथ देना, अंत तक भी साथ चलना, तुमसे बहुत सेवा लेनी है। तुम बैठे रहना और मैं उड़ जाऊं, ठीक है, ऐसे उड़ जाए, इसको धन्यवाद दें, खूब अभिनंदन करें। दूसरा धन्यवाद हमारे जितने भी साथी हैं, आज मैं यहां आपके सामने उपस्थित हूं, जिनके बदौलत आज का दिन देखने को मिला है, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा सिखाया पढ़ाया बुलाया, मधुबन निवासी बनाया, और जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया, जो हमारे सामने है, जो हमारे साथ में है, जिन्होंने भी परोक्ष या परोक्ष है या प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग दिया, उन सबका हृदय के साथ बड़ी गहराई के साथ दोनों हाथ ऊपर करके धन्यवाद दे दें। थैंक यू, सबका धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रकृति का भी दें, इस प्रकृति का धन्यवाद, जहां पर हम पल रहे हैं, जहां पर हमको ये मौका मिला है, अवसर मिला है, इस प्रकृति का धन्यवाद। और अंत में प्यारे बाबा को, बाबा आप मेरे पल पल साथी हैं, दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये बाबा को आप दिन भर में बाबा 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 कहते हैं, हजार बार बोलो बाबा बाबा, ये जितनी बार आप बाबा बाबा करेंगे उतना देर में कहीं न कहीं बाबा की बात तो याद आएगी। जब बुद्धि भटकती हो तो एक साथ ही 10-12 10 बार 15 बार बाबा 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 मीठा बाबा प्यारा बाबा कहेंगे तो बाबा तुम्हारे साथ आएगा, बाबा हमारे से अलग नहीं। ये बाबा की प्रेरणा है, बाबा की टीचिंग है। जो आप यहाँ पर आए, आप अपने आप नहीं आए हैं, उसने ठान लिया है कि आपको यहाँ पर लाना है, उसने ठान लिया है कि आपको बनाना है, संपूर्ण बना के रहना है। तो उसकी मेहरबानियां है, उसकी कृपा है, उसकी मैत्री कृपा है। जब हम आए हैं उसको हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, ओम शांति।
से